ஓம் சாந்தி. ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ की संपूर्ण स्थिति बाप समान बनना है. निराकार बाप समान, निराकारी और साकार ब्रह्मा बाप समान, उनके आचरण उच्चारण पर चलने वाला. तो शिव बाबा के समान निराकारी तो हम थोड़ा समय बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा साकार में हमारे सामने नंबर वन एग्जाम्पल बने. नंबर वन पुरुषार्थ करके कर्मातीत स्थिति बाबा ने प्राप्त की. तो हमेशा बाबा हमें कहते हैं कि हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा को सामने रखना है. उन्होंने जो संकल्प बोल कर्म किए, वैसे ही संकल्प बोल कर्म हमें करने हैं, कॉपी करना है. दुनिया में वैसे नकल करना बुरा माना जाता है, और अगर स्टूडेंट्स नकल करते हैं तो उन्हें सजा होती है, पनिशमेंट हो जाता है. लेकिन यहाँ तो बाबा हमें खुद कहते हैं किसको कॉपी करना है, ब्रह्मा बाबा को हमें हर कर्म में कॉपी करना है, उनके कदम पर कदम हमें रखना है. कई बार कहते हैं कि नकल में भी अकल चाहिए, हाँ, लेकिन इस नकल में हमें अकल लगानी है नहीं लगानी है, क्या कहेंगे? नहीं लगानी है. अपनी अकल लगाएंगे तो हमारे संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा ने किया हूबहू वैसा ही हमें करना है. तो हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा के संकल्प कैसे थे, उनका चिंतन कैसा था. सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रही. बहुत यज्ञ में परिस्थितियां आई, बहुत विघ्न आए यज्ञ की स्थापना के कार्य में. कैसी कैसी आत्माएं बाबा के सामने आई, आपने सुना है यज्ञ इतिहास, सभी ने सुना होगा. बाबा की जीवन कहानी सभी जानते हैं कि स्थापना के समय स्थिति ऐसी भी थी कि लोग इतने विरोधी थे कि उनको जान से मरवाने का भी प्रयत्न किया. तो एक सरदार जी को भेज दिया, कुछ पैसे देंगे, देते हैं पैसे जिनसे ये ऐसे काम करवाने होते हैं. तो वो तैयार हो गया, और जब वो ब्रह्मा बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही उसे गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हो गया. तो जैसे ही गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ तो उसका मन बिल्कुल बदल गया. आया था वो मारने के लक्ष्य से, लेकिन तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा कि बाबा मुझे तो आपको मारने के लिए भेजा था, लेकिन आप तो साक्षात गुरु नानक देव जी का स्वरूप हैं, आपकी हत्या करके तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मुझे माफ कर दीजिए. तो बाबा के मन की स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी, और ऐसी आत्मा भी जब सामने आई तो बाबा ने सहज ही उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा कि ये मेरे को मारने आया है, लेकिन सहज ही उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आगे के लिए कभी भी कोई ऐसा प्रलोभन दे तो ऐसा कार्य नहीं करना. तो हम भी जब बाबा के यज्ञ में आते हैं तो हमारे सामने इतने विकराल रूप के विघ्न तो नहीं आते हैं, आते तो जरूर हैं, कोई ना कोई आत्मा हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप जरूर बनती है, चाहे वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो हमारा समाज है, जो भी है। तो क्या फिर भी उन आत्माओं के प्रति जैसे बाबा के मन में सदा शुभ भावना शुभ कामना रही, हम रख पाते हैं? ये फॉलो फादर करना है कि ऐसी आत्माओं के प्रति भी जो जान लेने तक भी आ गए तो भी बाबा ने उनके प्रति शुभ भावना रखी है, जाकर उनका फिर पुलिस में रिपोर्ट कराया या इसके प्रति कोई एक्शन होना चाहिए। तो यदि हम रख पाते हैं तो हम फॉलो फादर कर रहे हैं, और नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब अभी तक हमारे अंदर वो कमी है। बाबा ने तन मन धन और संबंध, जैसे ही निश्चय हुआ शिव बाबा की प्रवेशता हुई है उसी समय एक धक से समर्पण किया, दूसरा संकल्प नहीं, कहीं भी संशय मात्र नहीं भविष्य में क्या होगा, क्योंकि उस समय तो यज्ञ का कोई भविष्य स्पष्ट था ही नहीं, यज्ञ तो था ही नहीं, अभी तो यज्ञ की स्थापना होनी थी। लेकिन फिर भी बिना किसी संदेह के और संशय के, राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न उठने की बहुत मार्जिन थी बाबा को, लेकिन फिर भी निश्चय के आधार पर, एक बल एक भरोसे के आधार पर सब कुछ स्वाहा किया। जो संबंधी थे, लौकिक संबंधी थे, वो लौकिक संबंधियों को, परिवार को छोड़ नहीं दिया, लेकिन लौकिक को भी अलौकिक बनाया, जो बाबा हमें आज भी सिखाता है कि हमें संबंधों को छोड़ना नहीं है। जैसे लोग सन्यासी हो जाते हैं तो घर परिवार का त्याग करते हैं, लेकिन अपने संबंधों को निभाते हुए भी उसमें अलौकिक वृत्ति लानी है, ट्रस्टी भाव, मेरा नहीं किसका है, तेरा है, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ निमित्त रखा है। तो अंत तक उन संबंधों को निभाया, बाबा की बेटी भी थी यज्ञ में, बाबा का बेटा भी था, बाबा की युगल भी थी, बाबा के भतीजे भी थे और संबंधी भी थे, जिनको भी ये ज्ञान में निश्चय हुआ वो सब यज्ञ में रहे। पर बाबा ने ऐसा नहीं किया जैसे दुनिया में लोग गुरु करते हैं, अपने परिवार को ही उत्तराधिकार देते हैं, जब गुरु चला जाता है तो उनके पीछे उस पंथ को चलाने वाला कौन होता है, उसका ही बेटा होता है, वही अपने पिता की गद्दी संभालता है, अगर बेटा नहीं है तो जो भी उसके परिवार का भतीजा होगा या उत्तराधिकारी होगा वही उसको चलाता है। लेकिन बाबा ने अपने परिवार में वो मोह नहीं रखा, जो योग्य था वो योग्य बाबा के स्थान पर आए। आप सभी जानते हैं प्रकाश मणि दादी जी, जिनका बाबा से कोई लौकिक संबंध नहीं था, बाबा के बाद उन्होंने बाबा के यज्ञ को संभाला। मातेश्वरी जगदम्बा, जिनको बाबा ने अपने साथ निमित्त बनाया, उनका भी बाबा के साथ कोई लौकिक संबंध नहीं था। तो जिसका जैसा पुरुषार्थ, उस अनुसार उसको जो स्थान मिलना चाहिए वैसा ही स्थान मिला। धन के लिए बाबा ने पूरा धन ईश्वरीय सेवा अर्थ ट्रस्ट बनाकर अपने नाम से समर्पित नहीं किया, ट्रस्ट भी अपने नाम से नहीं बनाया बाबा ने, ट्रस्ट भी बहनों को निमित्त बनाया, 8 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया। और जब लौकिक बेटे को शादी करनी थी, एक बेटा शादीशुदा नहीं था, तो बाबा ने कहा कि ये धन तो ईश्वरीय सेवा अर्थ है, तुम्हें शादी करनी है तो रिश्तेदार हैं उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी शादी करा देंगे, ये तो मेरा है नहीं, अब ये ईश्वरीय मानक है। अपने धन में से उसको हिस्सेदार नहीं बनाया। जैसे माता पिता सोचते हैं ना कि मेरी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, तो सर्वंश त्यागी, और वो भी बिना किसी भविष्य के प्रश्न के कि भविष्य में क्या होगा। तो इतना बाबा को एक बल एक भरोसा था, इतना निश्चय बुद्धि थे बाबा, और इसीलिए सदा विषयी रहे। और लौकिक जीवन में हम देखते हैं कि बाबा के लौकिक जीवन में वो बहुत प्रतिष्ठित थे, धनी थे, अपने समाज के धनी व्यक्ति थे वो, बहुत सम्मान था उनका, राजाओं महाराजाओं तक बाबा का व्यापार चलता था, जो हीरे जवाहरात का व्यापार था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, जो बाबा ने धारणाएं दी शुद्ध भोजन की, पवित्रता की, उसके कारण विरोध होने लगा समाज में। और जिन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना अपने जीवन में, सदा सम्मान पाया, कभी अपशब्द सुना नहीं, उनके ही सब दुश्मन बन गए। और अपशब्द एक तो क्या, लेकिन गालियों की वर्षा, और गालियों की वर्षा भी नहीं, कलंक भी लगाने लगे, कई प्रकार के कलंक। ओम मंडली के समय लगे, इनको तो 16,000 रानियां चाहिए, या जो भी, मतलब ये अपने को कृष्ण कहता है, क्योंकि उनसे बाबा, ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो जिनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था वो तो तुरंत जाकर बाबा के गले लग जाते थे। हमें सबको पता है बाबा, ब्रह्मा बाबा के समय माताएं भाई सब बाबा की गोदी में चले जाते थे। तो बाबा की गोदी में क्यों चले जाते थे, जैसे ही ऐसा साक्षात्कार होता था, वो कृष्ण तो इतना आकर्षण मूर्त है, उसको देख करके वो रुक ही नहीं पाते थे। तो ये सारी बातें जो अज्ञानी थे वो तो नहीं समझ सकते थे, तो बाबा पर कलंक भी लगे, लेकिन फिर भी सहनशीलता की शक्ति से बाबा सदैव मुस्कुराते रहे, यानी अचल अटल अडोल रहे, तो भी हलचल में नहीं आए, या उन आत्माओं के प्रति मन में कोई विरोधी भाव बाबा ने नहीं लाए। अनजान आत्माएं हैं, जानती नहीं हैं क्या कह रही हैं, और इस तरह से बाबा ने उनको भी क्षमा किया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, इतना नहीं, यज्ञ स्थापना के समय जितना हुआ, थोड़ा बहुत हमें भी सहन करना पड़ता है, हमें भी लोगों का सुनना पड़ता है, सुनते ही नहीं सुनते हैं जब ब्राह्मण बनते हैं तब, कभी कभी कोई कलंक भी लगाना शुरू कर देते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उनकी दृष्टि तो पवित्र है ही नहीं ना, तो वो कभी सोच ही नहीं सकते कि ये इतने पवित्र स्थान पर जाते हैं, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। सोचते हैं बहनों की संस्था में जाते हैं, पता नहीं, बहनों की संस्था में जाते हैं माना, तो कभी कभी सुनना भी पड़ता है, जो माताएं जाती हैं या भाई जाते हैं। अब तो सबको बहुत संस्था के बारे में मालूम है, अब तो बातें बहुत स्पष्ट हैं। आज हमारी पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल चलती है, तो क्या हमारी भी सहनशीलता की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है? बाबा कहता है जो सहन करता है उसको दुआएं मिलती हैं। सबसे पहले तो बाबा की ही दुआएं मिलती हैं, और फिर साथ साथ परिवार की दुआएं भी मिलती हैं। और जहां दुआएं होती हैं वहां सहज ही हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो बाबा की आज्ञा प्रमाण हम सहन करते हैं, हम जानते हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें समझ नहीं है कि हमारे ये जो नियम हैं, वो शिव बाबा ने सत्युगी सृष्टि की स्थापना के फाउंडेशन के रूप में, एक मर्यादा के रूप में हमें जीवन में पालन करना है, वो हमारे लिए है। वो उस बात से अनजान है, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हमारा उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार रहता है, तो धीरे धीरे वो आत्माएं भी समझती हैं और नजदीक भी आती हैं। और कोई कोई तो बाबा के वारिस बच्चे भी बन जाते हैं। हम जानते हैं हमारे परिवार में जो लोग पहले हमारा विरोध करते हैं, बाद में धीरे धीरे वो ही ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं। कई बार ज्ञान में चलाने वाले से भी वो आगे चले जाते हैं, उनसे भी तीव्र गति का पुरुषार्थ करते हैं। तो जब तक समझ नहीं होती है, तब तक वो स्थिति रहती है। तो हमारी सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। हर एक आत्मा की विशेषता देखनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखी। हर आत्मा की विशेषता को देखकर उस विशेषता से उसे सेवा के कार्य में लगाया। और हमेशा बोल ऐसे बोले जो उनमें उमंग लाने वाले, उन्हें आगे बढ़ाने वाले, हिम्मत देने वाले, निर्बल में बल भरने वाले और निराश को आशावादी बनाने वाले। तो मेरे भी बोल जो आत्माओं के प्रति हों, ऐसे हों। कई बार हम ऐसे बोल बोल जाते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कई बार अपमान की फीलिंग कराते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तभी हम ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी के ऊपर क्रोधित होकर के अपशब्दों की वर्षा नहीं की। सुना कभी हम बाबा ने क्रोध किया, या हमारी दादियां बाबा के बाद बाबा का कार्य संभालते हैं, यज्ञ संभालते हैं, तो गुस्से से, क्योंकि जो कंट्रोल करता है वो कई लोगों की गलती नोट करता है, उसे पता चलता है लोग इतनी गलती कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो गुस्सा करने का अधिकार बनता है, गुस्सा करके समझा सकते हैं। लेकिन बाबा ने कभी भी गुस्से से बच्चों से बात नहीं की। कई बार माताएं कहती हैं क्या करें, बच्चे हैं, इतना तंग कर देते हैं, मानते ही नहीं हैं, गुस्सा करना ही पड़ता है। तो अभी भी 2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा ना, सुनी बाबा की मुरली, क्या कहा बाबा ने, कृष्ण के साथ क्या करते थे, उसकी माँ क्या करती थी, उखली से बांध देती थी उसको, खाना नहीं देते थे। मतलब गुस्सा करके ऐसे शब्द ऐसे वचन बोलना वो बाबा की श्रीमत नहीं है। भले हमें सिखाना है, हम निमित्त हैं, जिम्मेवार हैं, हमारा फर्ज बनता है, तो हम कई दूसरे तरीके अपना सकते हैं जिसके आधार पर उसे हम सही मार्गदर्शन दे सकें। और अगर वो नहीं करते हैं फिर भी, तो भी उनका भाग्य है। साक्षी होकर देखना, बाबा ने भी ऐसे ही देखा। बहुत ट्रेटर बन गए जो यज्ञ में शुरू में आए, हम सुनते हैं हिस्ट्री में, यज्ञ छोड़कर चले गए। जब बेगरी पार्ट चला यज्ञ के अंदर, यज्ञ की स्थितियां भी तो परिवर्तन हुई। जब कराची से यहाँ आए, माउंट आबू में आए, तो शुरू के कुछ साल यज्ञ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और कई बार तो ऐसा हो गया, टाइम होता था खाने के बेल बजने का, 1 बजे खाने की बेल बजती थी और 11 बजे तक आटा नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, आटा ही नहीं। और 350 लोग यज्ञ में रहते थे, तो बाबा को चिंता हो सकती थी ना, अब ये 350 लोगों को खाना क्या खिलाएंगे, आटा ही नहीं है, हाँ कैसे होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो अभी बताया कि इतना शिव बाबा के ऊपर निश्चय था कि मैं भी बाबा का हूँ, ये यज्ञ भी बाबा का है, ये बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा रक्षक है, बाबा ही कल्याणकारी है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ऐसे ही होता था जब वो बिल्कुल भी क्यों क्या कैसे के प्रश्न में नहीं जाते, हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी ना, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्रामा में क्या मेरे साथ ही ऐसा होने वाला है, इतने विघ्न क्या मेरे ऊपर ही आने वाले हैं, बाबा नहीं गए किसी भी प्रश्न में, निश्चय माना फुल स्टॉप, कोई प्रश्न नहीं उठेगा मन के अंदर, जो हो रहा है शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, उसने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, उसमें कुछ कल्याण है, कुछ राज करा हुआ है। ऐसे ही हुआ, 11 बजे पोस्ट आती थी, उसमें पोस्ट में पैसा आ गया और आटा मंगा लिया, 1 बजने से पहले खाना बन गया और 1 बजे बेल भी बज गई, तो निश्चय की परीक्षा हुई। हमारी भी परीक्षा होती है कभी कभी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं ना, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत में हम कितने परिपक्व हैं, कहाँ तक हमारी स्थिति बनी है, तो ऐसे विघ्न रूपी टेस्ट पेपर हमारे सामने आते रहते हैं, तो यदि हम प्रश्नों में चले गए तो फीलिंग में आ गए तो फेल, और यदि अचल रहे तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया तो हम पास होते हैं। तो ऐसे कितने भाई बहने जो थे इस स्थिति में, यज्ञ जब आया तो पता नहीं क्या होगा भविष्य, इस यज्ञ का कोई भविष्य तो अच्छा नजर नहीं आता है, तो खाने पीने का भी भरोसा नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो यज्ञ छोड़कर चले गए। तो भी जो आत्माएं चली गई और कोई असंतुष्ट भी हुई, कईयों ने बाबा का सामना भी किया, ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा इनके तन में आते हैं, तो वो कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, उनका हमें कितना सम्मान होना चाहिए, उसकी बजाय अपने ही समान उनको साधारण समझकर उनके साथ व्यवहार, वैरायटी संस्कारों की आत्माएं, इतना बड़ा संगठन होता है तो हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार होते हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी बाबा ने सब की विशेषता देख करके उनको आगे बढ़ाया, उनको संतुष्ट किया, कभी भी किसी के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं हुए, और तीनों प्रकार की सेवाओं को महत्व दिया अपने जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा सेवा भी, बाबा 2:30 बजे उठकर के रोज योग अभ्यास करते थे, हालांकि बाबा की आयु बहुत अधिक थी, कोई ये एक्सक्यूज दे सकता है बहाना कि हाँ हम तो इतने बड़ी उम्र के हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, हमारे लिए उठना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये दर्द है वो दर्द है, ये तकलीफ है वो तकलीफ है, बताए ना, आज भी थोड़ा हम ज्यादा थके हुए होते हैं, रात को सोते हैं और सुबह सोचते हैं अमृत वेले, अरे बहुत थके हुए थे रात को, सिर में दर्द था, आज नहीं उठते हैं कल उठेंगे, तो यूथ होते हैं तो भी कोई ना कोई बहाना मन में चलता है, तो बाबा तो कितनी बड़ी आयु के थे, 93 साल की आयु बाबा की थी जब बाबा अव्यक्त हुए, लास्ट दिन तक भी बाबा ने अपने पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं आने दिया, लास्ट दिन तक भी बाबा ने सेवा की, मुरली चलाई, उसके पहले दिन में बाबा ने सब बच्चों को पत्र लिखे, बाबा पत्र लिखते थे आप सबको पता है, तो उस दिन दादी जी इशु दादी जी अपनी हैं जो बाबा के साथ पत्रों में सहयोग करती थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज मुझे सारे पत्रों का जवाब दे देना है। तो उस दिन शनिवार था, तो उन्होंने कहा कि रविवार है बाबा कल, आज शनिवार है, पोस्ट तो जाएगी नहीं, तो हम कल सारे पत्रों का जवाब दे देंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, मुझे आज ही सारे पत्रों का जवाब देना है। तो बाबा ने उसी दिन दिन में, हालांकि उस दिन बाबा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए सुबह बाबा ने 18 जनवरी के दिन 1969 को मुरली नहीं चलाई, वो मुरली रात को चलाई। तो बाबा ने सारे पत्र लिख दिए और रात को भी मुरली चलाई और लास्ट में कहा, अच्छा बच्चे विदाई। हाँ, ये शब्द बाबा कभी नहीं कहते थे, लेकिन उस दिन बाबा को जैसे अंदर में मालूम था, तो इनडायरेक्ट रूप में बाबा ने ऐसे दरवाजे से, छोटे हॉल के दरवाजे से बाहर निकलते हुए ये शब्द बाबा ने कहे। और फिर दादियां जैसे बाबा के कमरे में 9 बजे का लगभग समय था, विदाई लेने के लिए जाते थे, गुड नाइट कहने के लिए जाते थे, तो दादियां गई पीछे पीछे और दादी प्रकाशमणि जी को बाबा ने रोका हुआ था उन दिनों, वो किसी पार्टी को लेकर के मधुबन में आए थे, तो दादी सामने थी, दादी का हाथ हाथ में लेकर के, और एक मिनट में बाबा जैसे एक पंछी उड़ जाता है ऐसे, इतना सहज, कर्म बंधन भी नहीं कहेंगे, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग से एक सेकंड में बाबा ने समाप्त कर लिया। लास्ट दिन भी चलते फिरते सहज, जो भी थोड़ा तन का हिसाब किताब था अपना, बाबा ने सहज रीति से चुकतू किया। तो अपने पुरुषार्थ पर, यानी तीनों ही पुरुषार्थ पर, मनसा वाचा कर्मणा पर बाबा ने पूरा अटेंशन दिया, पूरा गॉडली स्टूडेंट लाइफ रही। हमेशा अपने आप को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहलाया, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। ऐसे तो बाबा अथॉरिटी थे, शिव बाबा का रथ है तो कहेंगे हाईएस्ट अथॉरिटी थे, लेकिन अंश मात्र भी अभिमान की बुद्धि नहीं, मैंपन की बुद्धि नहीं, सदा ही निमित्त और निर्माण भाव रहा बाबा का। कभी नहीं कहा मैं करता हूं, और यही हम दादियों में भी देखते रहे, चाहे दादी प्रकाशमणि थी, आज हमारी दादी जानकी हैं, बाबा 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 ही सदा मुख में होता है। और इसीलिए जो ज्ञान भी दिया बाबा ने निर्माणता से दिया, लेकिन उसमें सत्य ज्ञान की अथॉरिटी और निर्भयता दिखाई देती है। मुरली हम सुनते हैं, मुरली में ऐसे नहीं बाबा स्पष्ट नहीं बोलते हैं, सब बातें बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे, कहीं भी जरा भी भय नहीं कि ये बात कहने से ये भक्ति करने वाले हैं उनको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो निर्माणता भी थी, यानी वो बोल इस तरह के थे कि अथॉरिटी के बोल होते हुए भी मधुर बोल, यानी ये फील होता था कि हाँ ये तो हमारे भले के लिए कहा गया है, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। आज भी मुरली में कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे सीधे शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बुरे नहीं लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाबा अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए बाबा हमें ये श्रीमत दे रहे हैं। इससे हमारा ही परिवर्तन होने वाला है, हमारा ही भला होने वाला है। तो हम भी जब दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि वही सेवा बाबा ने हमें भी दी है, हम भी सब अपने संपर्क संबंध की सेवा करते हैं, कुछ को बेहद की सेवा की जिम्मेवारी है, कुछ को थोड़ी हद की सेवा की जिम्मेवारी है, तो जहां भी हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो जो सत्य ज्ञान है बाबा का, उस सत्य ज्ञान को उतनी ही अथॉरिटी से और निर्भयता से हमें भी सुनाना है। और बाबा ने जैसे कर्मणा सेवा को महत्व दिया, हम सुनते हैं यज्ञ इतिहास में हमारी दादियों ने, बाबा ने खुद दादियों के साथ, दादियों से भी करवाया और साथ साथ खुद भी उस कर्म में साथी बने। हमेशा बाबा कहते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके दूसरे करेंगे। तो साधारण से साधारण भले यज्ञ सेवा है, अनाज साफ करना है, सब्जी काटना है, उन दिनों में गोबर के गोले बनते थे, आज के जमाने में तो गैस का जमाना है, अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उस जमाने में अंगीठी जलती थी, बड़ी बड़ी अंगीठियां जलती थी, तो उसके लिए वो गोले बनते थे। तो बाबा खुद बैठ करके कई बार वो भी गोले भी बनाते थे। लेकिन जितना साधारण कार्य उतनी स्थिति श्रेष्ठ। ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं या सफाई कर रहे हैं तो हमारी स्थिति भी साधारण हो जाए। बाबा कहता था नहीं, साधारण कार्य करते हुए भी कोई देखे तो भी उसको आपकी स्थिति से साक्षात्कार हो जाए। और अगर आपने बाबा की याद में साधारण कार्य किया तो भी उतने ही मार्क्स हैं जितना कि कोई भाषण करने वाले के मार्क्स होते हैं। भाषण करने वाले को ऊंची सेवा माना जाता है और कोई साधारण कार्य कर रहा है, वही सफाई का कार्य कर रहा है या कपड़े धो रहा है या बर्तन साफ कर रहा है, उसको हम थोड़ा साधारण सेवा मानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, हर एक सेवा के 100% मार्क्स है। मानो कोई भाषण करता है और भाषण करने के बाद किसी ने प्रशंसा की और उसके बाद देह अभिमान में आ गए, थोड़ा मैपन आ गया, उसको स्वीकार कर लिया या किसी से डिस्टर्ब हो गए, भाषण तो किया लेकिन किसी से बातचीत हुई, मन की स्थिति खराब हो गई, तो कुछ भी जमा नहीं हुआ। उस सेवा का जमा नहीं होता है जो सेवा खुद को डिस्टर्ब करे और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। लेकिन अगर हमने साधारण सेवा की, बाबा की याद में श्रेष्ठ स्थिति में की, कर्मयोगी बनकर की, तो उसके भी 100 मार्क्स हैं। और इसीलिए तीनों ही सेवाओं की, मनसा वाचा कर्मणा, हमें 100% मार्क्स लेने। हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जब लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें भी कई सब्जेक्ट होते हैं, तो यदि हमें पास विद ऑनर होना है तो हमें सब सब्जेक्ट्स का ध्यान देना पड़ता है। जब हम सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं तभी हम पास विद ऑनर हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमारी पढ़ाई के जो चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और सेवा में भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा में हमारा पूरा अटेंशन। ऐसे नहीं, मनसा वाचा तो अच्छा है, कर्मणा सेवा, बाबा ने देह अभिमान तुड़वाया, सबका सब अच्छे घरों से, धनी घरों से आए हुए थे, जो ओम मंडली में आए थे सब अच्छे परिवारों से आए हुए थे, लेकिन सभी ने यज्ञ में सब कार्य किए, जूते भी बनवाए, सिलवाए हैं बाबा ने, माली का काम भी करवाया, मैकेनिक भी बनाया। यशु दादी सुनाती हैं अपने, आजकल यशु दादी क्लास में आते हैं, कि एक बार बाबा ने कहा कि 15 दिन तक कोई भी अपवित्र आत्मा इस यज्ञ में नहीं आएगी, यानी कोई भी जो वर्कर क्लास आती है या लेबर क्लास आती है काम करने के लिए, कोई भी यज्ञ में नहीं आएंगे। तो सारा काम हमको ही करना है, हमको ही करना है, तो फिर हमने सारे काम किए, गाड़ी के मैकेनिक बनकर के गाड़ी साफ भी की, सिक्योरिटी की ड्यूटी भी दी, पेड़ पौधों को यानी माली बनकर के सारे पेड़ पौधों की संभाल भी की। यज्ञ में बड़े बड़े बर्तन होते थे, है ना, क्योंकि 350 लोगों का खाना बनेगा तो कोई छोटे बर्तन तो नहीं होंगे, तो वो बर्तनों में घुस घुस करके बर्तन साफ करने पड़ते थे। सब कार्य किए, तो आज भी यज्ञ सेवा का बेहद स्वरूप है। आप जहाँ चाहे सेवा केंद्रों पर हैं, चाहे बाबा के इस महायज्ञ में आते हैं, मधुबन में आते हैं, सेवाधारी बनकर आते हैं, विशाल सेवा का स्वरूप है। तो हमें जो भी बाबा कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा इस यज्ञ में हम अपना तन लगाते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को जब इस सेवा में लगाते हैं, जिसको बाबा कहता है हड्डी हड्डी अगर यज्ञ सेवा में लगती है, तो बहुत जल्दी हम फरिश्ता बन जाते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, कर्मेंद्रियां जल्दी शीतल हो जाती हैं, वो यज्ञ सेवा का फल हमें मिलता है। लेकिन निर्विघ्न सेवा, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया उसी तरह से हमें वो सेवा करनी है। फिर बाबा का पुरुषार्थ हम देखते हैं, तो बाबा ने अशरीरी स्थिति बनाने का विशेष अटेंशन दिया, अपने आप को फरिश्ता बनाने का भी विशेष अटेंशन दिया। कोई भी बाबा से मिलने जाते थे, जैसे हमारी दादियां सुनाती हैं, बाबा से मिलने जब जाते थे तो बाबा की दृष्टि मिलते ही देह से जैसे उड़ गए, उपराम हो गए, दैहिक भान ही भूल जाते थे। शुरू शुरू में तो साक्षात्कार में चले जाते थे, लेकिन बाद में देही अभिमानी स्थिति का अनुभव बाबा की दृष्टि मिलते ही होता था, बॉडीलेस स्टेज जिसको बोलते हैं। और एक बार बाबा को संदेशी ने बताया, यज्ञ में कई संदेशी बहनें थी, तो एक संदेशी बहन ने बताया कि मैंने आज ऊपर वतन में ब्रह्मा बाबा को देखा, लेकिन वो जो ऊपर वाला ब्रह्मा बाबा है और नीचे वाला ब्रह्मा बाबा जो साकार में मैं देखती हूँ, उसमें अंतर है। जो ऊपर वाला ब्रह्मा बाबा था उसकी लाइट बहुत ज्यादा थी, यानी वो तो लाइट ही था, क्योंकि ऊपर तो हड्डी मांस का शरीर है ही नहीं, फरिश्ता स्वरूप तो लाइट का शरीर है, और जो ये ब्रह्मा बाबा है उसमें तो उतनी लाइट नहीं है। तो ये बात पहली बार ऑल माइटी बाबा कहते थे, शिव बाबा को ऑल माइटी बाबा कहते थे, तो ये संदेश पहली बार आया था। तो उसने मम्मा को सुनाया और मम्मा को भी समझ में नहीं आया, मम्मा ने बाबा को कहा और बाबा को भी वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई कि ऊपर अलग ब्रह्मा और नीचे अलग ब्रह्मा, ये इसका क्या राज है। तो फिर से उसको भेजा, कहा कि पूछो कि जो ऊपर ब्रह्मा है वो कौन है। तो पूछा उसने, पूछकर आई संदेशी, तो उसने कहा जो ऊपर ब्रह्मा है वो इसी साकार ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप है, और इस साकार ब्रह्मा को पुरुषार्थ करके वो फरिश्ता स्वरूप वाला ब्रह्मा संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बनना है। तो जैसे ही बाबा को ये समझ में आया कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वो फरिश्ता स्वरूप वो इस ऐसा है, तो बाबा ने दिन रात वो पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो हम सुनते हैं लास्ट के दिनों में, लास्ट के कुछ सालों में बाबा बिल्कुल अंतर्मुखी और एकांत स्थिति में रहते थे, बच्चों से समाचार भी सुनते थे, जो भी बच्चे आते थे बाबा से मिलते थे, समाचार सुनाते थे, लेकिन वो महसूस करते थे कि बाबा सुनते सुनते बीच में एकदम जैसे उपराम हो गए हैं, सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे हैं। तो ये बाबा ने विशेष गुप्त पुरुषार्थ किया और इस पुरुषार्थ ने बाबा को कर्मातीत बनने में मदद की। लास्ट में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जिसे हम कहते हैं कि सभी के लिए बाबा अति प्यारे थे, है ना, हर एक समझता था बाबा मेरा है। जो बच्चे मिलेंगे तो बाबा बिल्कुल बच्चों के साथ उन्हें बच्चों जैसा स्नेह देते थे, तो वो महसूस करेंगे कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना और किसी को नहीं करता है। ऐसे ही जो बुजुर्ग मिलेंगे बाबा से, बाबा उनसे उसी तरह से जैसे वो अनुभवी हैं, इस तरह से बाबा उनसे मिलेंगे और अनुभव कराएंगे कि बाबा उनका ही है। तो वो भी ऐसे ही महसूस करेंगे कि बाबा का हमसे जितना प्यार है शायद और किसी से नहीं। माताओं से मिलेंगे, पांडवों से मिलेंगे, जिनसे भी बाबा मिलते थे। आज भी हम सब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा बाबा। हाँ, कोई कहेगा कि मेरा नहीं है, आपका है। हाँ, या हम सब फील करते हैं कि बाबा का जितना प्यार या मेरा जितना प्यार बाबा के साथ है, हाँ, बाबा का भी उतना ही प्यार मेरे साथ है। तो ब्रह्मा बाबा से हर एक आत्मा ऐसा अनुभव करती थी, बहुत सबके स्नेही थे। लेकिन जितना बाबा सबके स्नेही थे उतना ही न्यारे थे। और इसीलिए लास्ट समय में बच्चे सामने होते हुए भी न्यारा होने में बाबा को कितना समय लगा। बाबा यही हमें कहते हैं कि हमारी जो अंतिम स्थिति होनी चाहिए, जब अंत समय, अंत घड़ी, अंत मते सो गते कहते ना, तो एक सेकंड में, ऐसे नहीं मेरा पति, मेरा बच्चा या जो भी मेरा है, जो भी हमारी धन संपत्ति है वो मेरा, या मेरा ये काम रह गया, लास्ट घड़ी कुछ भी किसी में भी हमारा आकर्षण या बुद्धि न जाए, कहीं भी हमारा लगाव झुकाव ना हो, एक सेकंड में बुद्धि न्यारी हो जाए, ये मन की स्थिति अगर होगी तो ही उस लास्ट पेपर में हम एक सेकंड में पास होंगे, यानी कर्मातीत स्थिति हमारी हो जाएगी। ये पुरुषार्थ हमें बहुत काल से करना है, अंत घड़ी में ये पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते। अंत घड़ी में तो जो पहले से किया हुआ है वही काम आएगा, क्योंकि उस समय मन को खींचने वाली परिस्थितियां बहुत होंगी। उन परिस्थितियों में भी मन एक बाप दूसरा ना कोई इस स्थिति का अनुभव कर ले। जैसे बाबा ने अपने पूरे जीवन में बेहद की वैराग स्थिति को बनाए रखा। बाबा तो खुद संपन्न थे हम सब जानते हैं, लेकिन यज्ञ में वो कितना साधारण रीति से रहे। लास्ट तक भी बाबा ने अपने लिए कुछ अलग से बनाया हो, जिस पुराने कमरे में रहते थे उस पुराने कमरे में रहे, जो भी साधन सुविधाएं थी वो साधन सुविधाएं मुझे सेवा के लिए, ठीक है, सेवा के लिए यज्ञ में विस्तार हुआ, मकान बने, सब कुछ, सब साधन भी आए। आज भी हम बाबा के बच्चों को साधन यूज करने के लिए बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन वो साधन मेरी साधना को डिस्टर्ब नहीं करे। वो साधन के कारण बाबा मुझे भूल जाए या वो साधन मुझे आकर्षण में ले आए, उन साधनों में मुझे आसक्ति हो जाए, वो मेरे मन की स्थिति को हलचल में ले आए, उसे हम वैराग नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी ये स्थिति अंत तक अपने पुरुषार्थ में अटेंशन में रखी। हमें भी ये ध्यान देना है। आज तो साधन कई गुना है उस समय से, कई गुना आज हमारे पास ऐसे साधन हैं, पर उन साधनों का प्रयोग करते हुए भी हम मन से न्यारे रहें। मन में सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति हमारी रहे। तो और भी ऐसे तो बाबा की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है, जिन्हें हमें फॉलो करना है, और जितना जितना हम उसे अटेंशन में रखेंगे उतना उतना हमारा पुरुषार्थ सहज होगा और हम संपूर्णता के समीप सहज पहुंचेंगे, बाप समान स्थिति को हम सहज प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा ने हमारे लिए पुरुषार्थ तो बहुत सहज किया है, लेकिन नंबरवार है फिर भी हम सभी, हालांकि सभी के लिए वो बाबा कहते हैं सभी के लिए एक जैसा, एक ही समय, हाँ, सब कुछ बाबा ने सबको सब खजाने दिए हैं, सब प्राप्तियां कराई हैं, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे उसे क्योंकि नंबरवार यूज करते हैं, नंबरवार प्रयोग में लाते हैं, और इसीलिए यथाशक्ति यथा योग्य हम अपने पुरुषार्थ में बन जाते हैं। तो बाबा के इन विशेषताओं को अपने सामने रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम अपना पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति।
करके तपस्या